समय पर्चा नंबर दो
IGCSE Practice Examination in Urdu as a Second Language Paper 2 Listening Turn over now.
Mashq number 1 Taal number 8 ta 8 Sawal number 1 ta 8 ke liye aap 8 mukhtalif hisse sunenge. Har sawal ka jawab di gayi line par tehreer karein. Aapka jawab mukhtasar hona chahiye. Aap har hisse ko do baar sunenge. सवाल नंबर एक
फहद तुम आज सुबह स्कूल देर से पहुंचे
हाँ क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी
क्या कोई हादसा हुआ था
नहीं बस एक पुरानी गाड़ी खराब हो गई थी जिससे सारा रास्ता बंद हो गया
चलो कोई बात नहीं क्लास का काम मुझसे नकल कर लेना कल रियाजी का टेस्ट होगा
सवाल नंबर एक
फहद तुम आज सुबह स्कूल देर से पहुंचे
हाँ क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी
क्या कोई हादसा हुआ था
नहीं बस एक पुरानी गाड़ी खराब हो गई थी जिससे सारा रास्ता बंद हो गया
चलो कोई बात नहीं क्लास का काम मुझसे नकल कर लेना कल रियाजी का टेस्ट होगा
सवाल नंबर दो मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात आज किस पुरवक़ार तकरीब में आपको खुश आमदेद कहते हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आपसे दरख्वास्त है कि अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें मोबाइल फ़ोन बंद कर दें प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की इजाज़त सिर्फ मीडिया टीम को है प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की तकरीर के बाद सवाल और जवाब की नशस्त होगी
सवाल नंबर दो मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात आज किस पुरवक़ार तकरीब में आपको खुश आमदेद कहते हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी तकरीबन 10 मिनट में पहुंच जाएंगे आपसे दरख्वास्त है कि अपनी नशस्तों पर तशरीफ़ रखें मोबाइल फ़ोन बंद कर दें प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग की इजाज़त सिर्फ मीडिया टीम को है प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की तकरीर के बाद सवाल और जवाब की नशस्त होगी
सवाल नंबर तीन
जी क्या आप कुछ खास ढूंढ रही हैं
जी हाँ मुझे बच्चों के लिए कहानियों की किताबें चाहिए जिनमें तस्कीरें भी हों
हमारे पास दिलचस्प कहानियां सीरीज आई है आप ये देख सकती हैं
बहुत खूब मैं 2 जिल्दें लूंगी
ये आजकल बच्चों में कहानियां पढ़ने का रवाज कम हो रहा है लेकिन इस सीरीज को बच्चों ने बहुत पसंद किया है
सवाल नंबर 3
जी क्या आप कुछ खास ढूंढ रही हैं
जी हाँ मुझे बच्चों के लिए कहानियों की किताबें चाहिए जिनमें तस्कीरें भी हों
हमारे पास दिलचस्प कहानियां सीरीज आई है आप ये देख सकती हैं
बहुत खूब मैं 2 जिल्दें लूंगी।
ये लीजिए, आजकल बच्चों में कहानियां पढ़ने का रवाज कम हो रहा है, लेकिन इस सीरीज को बच्चों ने बहुत पसंद किया है।
सवाल नंबर 4।
सर, मैं अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ।
क्या वजह है?
मेरी बहन की मंगनी है और कुछ तैयारियों में मदद करना है।
मगर छुट्टी की दरख्वास्त पहले ही जमा करा देना, अगले हफ्ते होने वाले इम्तहान के बारे में गाफिल ना रहें।
जी जरूर सर।
सवाल नंबर 4।
सर, मैं अगले हफ्ते 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ।
क्या वजह है?
मेरी बहन की मंगनी है और कुछ तैयारियों में मदद करना है।
मगर छुट्टी की दरख्वास्त पहले ही जमा करा देना, अगले हफ्ते होने वाले इम्तहान के बारे में गाफिल ना रहें।
जी जरूर सर।
सवाल नंबर 5।
इरम, तुम कल अस्पताल क्यों गई थी?
दरअसल अम्मी के टेस्ट करवाने थे।
सब खैरियत है ना?
जी, कोई ज्यादा मसला तो नहीं। मेरे में दर्द था, डॉक्टर ने परहेज का मशवरा दिया है।
ओह, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए।
सवाल नंबर 5।
इरम, तुम कल अस्पताल क्यों गई थी?
दरअसल अम्मी के टेस्ट करवाने थे।
सब खैरियत है ना?
जी, कोई ज्यादा मसला तो नहीं। मेरे में दर्द था, डॉक्टर ने परहेज का मशवरा दिया है।
ओह, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए।
सवाल नंबर 6।
आपको मुतला किया जाता है, मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 दिन तेज हवाओं और हल्की बारिश की तवक्को है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। सफ़र करने वाले हजरात से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बारिश से बचाव के लिए तैयार रहें। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, दौरान सफ़र मोहतात रहें।
सवाल नंबर 6।
आपको मुतला किया जाता है, मौसम की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 दिन तेज़ हवाओं और हल्की बारिश की तवक्को है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। सफ़र करने वाले हजरात से गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और बारिश से बचाव के लिए तैयार रहें। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, दौरान सफ़र मोहतात रहें।
सवाल नंबर 7।
अली, कल तुमने नई साइकिल खरीदी?
हाँ, अब्बू ने इनाम के तौर पर ले दी, क्योंकि मैंने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए।
तुमने कौन सा रंग पसंद किया?
नीला, क्योंकि वो रोशनी में चमकता है।
कैसा है वो, जरा दिखाओ तो।
घर पर है, चलो चलते हैं वहां।
सवाल नंबर 7।
अली, कल तुमने नई साइकिल खरीदी?
हाँ, अब्बू ने इनाम के तौर पर ले दी, क्योंकि मैंने इम्तिहान में अच्छे नंबर लिए।
तुमने कौन सा रंग पसंद किया?
नीला, क्योंकि वो रोशनी में चमकता है।
कैसा है वो, जरा दिखाओ तो।
घर पर है, चलो चलते हैं वहां।
सवाल नंबर 8।
السلام علیکم، احمد الیکٹرانک سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی ایل ای ڈی ٹی وی کی مرمت مکمل ہو چکی ہے، براہ کرم دکان کے اوقات میں آ کر اسے وصول کریں۔ ہماری دکان شام 6 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ استعمال کرنے کے بعد ہمیں ہماری سروسز کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، شکریہ۔
سوال نمبر 8۔
السلام علیکم، احمد الیکٹرانک سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کی ایل ای ڈی ٹی وی کی مرمت مکمل ہو چکی ہے، براہ کرم دکان کے اوقات میں آ کر اسے وصول کریں۔ ہماری دکان شام 6 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ استعمال کرنے کے بعد ہمیں ہماری سروسز کے بارے میں ضرور آگاہ کیجیے، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، شکریہ۔
مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے۔ پرچے میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات پڑھیں۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9، شہد کی مکھیوں کے بارے میں آپ ایک تقریر سنیں اور نیچے دیے گئے جملے 1 یا 2 لفظ لکھ کر مکمل کریں۔ آپ یہ تقریر 2 بار سنیں گے۔
شہد کی مکھیاں صرف شہد بنانے کے لیے ہی نہیں جانی جاتیں، بلکہ یہ پودوں میں بار آوری کے عمل میں بھی مرکزی کردار ادا کرتی ہیں۔ ان کے بغیر قدرتی نظام کا توازن بگڑ سکتا ہے۔ شہد کی مکھیاں خاص طور پر چھتے بناتی ہیں، جن میں ہزاروں کی تعداد میں مکھیوں کا ایک خاندان رہتا ہے۔ ہر چھتے میں ایک مرے کا مکھی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے، اور پوری کالونی اس کے تحت کام کرتی ہے۔ باقی مکھیاں مزدور مکھیاں کہلاتی ہیں، جو خوراک لانے، صفائی کرنے اور چھتے کی حفاظت کا کام کرتی ہیں۔ نر مکھیاں صرف افزائش نسل کے لیے ہوتی ہیں، ان کا کردار محدود ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیوں کا نظام انتہائی منظم اور مربوط ہوتا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک مکھی اپنی پوری زندگی میں صرف 1 چمچ کے 12ویں حصے جتنا شہد تیار کر سکتی ہے، لیکن جب ہزاروں مکھیاں مل کر کام کرتی ہیں تو وہ ایک مکمل چھتہ بھر دیتی ہیں۔ یہی اجتماعی محنت شہد کی مکھیوں کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب کوئی مکھی پھولوں کا رس لے کر آتی ہے تو وہ مخصوص انداز میں ناچ کر دوسروں کو بتاتی ہے کہ خوراک کہاں ہے۔ یہ بات حیرت انگیز ہے کہ ان کا یہ رقص زاویے، سورج کی روشنی اور ہوا کی سبت کو مد نظر رکھ کر ہوتا ہے۔ شہد کی مکھیاں نہ صرف شہد پیدا کرتی ہیں بلکہ موم اور پولن بھی۔ مکھی کا زہر بھی طبی استعمال میں آتا ہے۔ شہد کو قدیم زمانے سے غذا اور دوا دونوں کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس، جراثیم کش خصوصیات اور توانائی دینے والے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر دنیا سے شہد کی مکھیاں ختم ہو جائیں تو چند سالوں میں زمین پر फूलदार पौधों की बड़ी तादाद मादूम हो जाएगी। इसके नतीजे में खुराक का पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में शहद की मक्खियों के तहफ़ पर जोर दिया जा रहा है।
अब आप ये तकरीर दोबारा सुने।
शहद की मक्खियाँ सिर्फ शहद बनाने के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि ये पौधों में बार आवरी के अमल में भी मरकजी किरदार अदा करती हैं। इनके बगैर कुदरती निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। शहद की मक्खियाँ ख़ास तौर पर छत्ते बनाती हैं, जिनमें हज़ारों की तादाद में मक्खियों का एक ख़ानदान रहता है। हर छत्ते में एक मरेका मक्खी होती है जो अंडे देती है, और पूरी कॉलोनी उसके तहत काम करती है। बाकी मक्खियाँ मजदूर मक्खियाँ कहलाती हैं, जो खुराक लाने, सफाई करने और छत्ते की हिफाजत का काम करती हैं। नर मक्खियाँ सिर्फ अफजाइश नस्ल के लिए होती हैं, उनका किरदार महदूद होता है। शहद की मक्खियों का निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म और मरबूत होता है। एक दिलचस्प बात यह है कि एक मक्खी अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक चम्मच के 12वें हिस्से जितना शहद तैयार कर सकती है, लेकिन जब हज़ारों मक्खियाँ मिलकर काम करती हैं तो वो एक मुकम्मल छत्ता भर देती हैं। यही इज्तमाई मेहनत शहद की मक्खियों की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई मक्खी फूलों का रस लेकर आती है तो वो महसूस अंदाज में नाचकर दूसरों को बताती है कि खुराक कहाँ है। यह बात हैरत अंगेज है कि उनका यह रक्स जाविये, सूरज की रोशनी और हवा की सब्त को मद्देनजर रखकर होता है। शहद की मक्खियाँ न सिर्फ शहद पैदा करती हैं, बल्कि मोम और पोलन भी। मक्खी का जहर भी तिबी इस्तेमाल में आता है। शहद को कदीम ज़माने से गिज़ा और दवा दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस पे कुदरती मिठास, जरासीम कुछ खसूसियात और तवानाई देने वाले अज्जा शामिल होते हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर दुनिया से शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो जाएं, तो चंद सालों में ज़मीन पर फूलदार पौधों की बड़ी तादाद मादूम हो जाएगी। इसके नतीजे में खुराक का पूरा निज़ाम मुतासर हो सकता है। यही वजह है कि आज दुनिया भर में शहद की मक्खियों के तहफ़ पर जोर दिया जा रहा है।
मश्क नंबर 2 ख़त्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 3 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 3 के सवालात पढ़ें। नंबर 3 सवाल नंबर 10 आप एनिमे के मुतल्लिक 6 अशखास की गुफ्तगू सुन रहे हैं। हर एक शख्स को اس کی دی گئی رائے اے تا جی سے ملائیں۔ ہر شخص کے لیے انگریزی حروف اے تا جی میں سے ایک حرف دیے گئے خانے میں لکھیں۔ ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کریں۔ ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر حصے کو دو بار سنیں گے۔
پہلی رائے،
مجھے بچپن ہی سے کارٹونز دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب میں نے پہلی بار اینیمے دیکھا تو مجھے لگا جیسے کسی فلم کی کہانی دیکھ رہا ہوں۔ اینیمے میں جو جذبات، کہانی اور کرداروں کی گہرائی ہوتی ہے وہ عام کارٹونز میں نہیں ہوتی۔ کارٹونز زیادہ تر مزاحیہ ہوتے ہیں، جبکہ اینیمے انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ میرے لیے اینیمے بہتر ہے کیونکہ اس میں سنجیدگی بھی ہوتی ہے اور تفریح بھی۔
دوسری رائے،
میرے نزدیک دونوں کی اپنی جگہ ہے، لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو اینیمے میں تخیل اور بصری خوبصورتی کہیں زیادہ ہے۔ میں نے جب اٹیک آن ٹائٹن دیکھا تو سمجھ آیا کہ اینیمے صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ ہر عمر کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ عام کارٹونز چند منٹ کی ہنسی تک محدود ہوتے ہیں، لیکن اینیمے ایک مکمل دنیا بناتا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے اینیمے زیادہ پسند ہے۔
تیسری رائے،
کارٹونز اور اینیمے دونوں کا اپنا الگ انداز ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں اینیمے میں جو پیچیدہ کہانیاں اور کرداروں کی ترقی بہت متاثر کن ہوتی ہے۔ میں نے نروٹو کے ذریعے دوستی، محنت اور قربانی کے معنی سیکھے جو کسی عام کارٹون میں ممکن نہیں تھا۔ کارٹونز اکثر سادہ اور سطحی ہوتے ہیں، جبکہ اینیمے انسان کے جذباتی کیفیتوں کو بھی دکھاتا ہے۔
چوتھی رائے،
میرے لیے اینیمے صرف تفریح نہیں بلکہ ایک طرح کی جذباتی وابستگی ہے۔ جب میں کوئی اینیمے دیکھتا ہوں تو میں کرداروں کے ساتھ جڑ جاتا ہوں، ان کی خوشی اور غم محسوس کرتا ہوں۔ کارٹونز میں ایسا کم ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف ہنسانے پر زور دیتے ہیں۔ اینیمے کے مناظر، موسیقی اور مکالمے اتنے مؤثر ہوتے ہیں کہ وہ دل میں اتر جاتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے اینیمے کارٹون سے کہیں بہتر ہے۔
پانچویں رائے،
میں مانتا ہوں کہ ہر ایک کی پسند مختلف ہوتی ہے، لیکن اینیمے میں جو بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس کی ثقافت اور گہرائی ہے۔ جاپانی تہذیب، رسوم اور رہن سہن کا انداز اینیمے کے ذریعے سیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ کارٹونز میں زیادہ تر خیالی اور مزاحیہ باتیں دکھائی جاتی ہیں۔ اینیمے میں سبق بھی ہوتا ہے اور حقیقت کا عکس بھی۔ اسی وجہ سے میں اینیمے کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔
چھٹی رائے،
اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں کہوں گا کہ اینیمے اور کارٹونز کا موازنہ کرنا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ دونوں کا مقصد مختلف ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اینیمے کی کہانیوں میں جو تسلسل، جذبات اور مقصد ہوتا ہے وہ کارٹون سے کہیں زیادہ متاثر کن ہوتا ہے۔ میں نے یور نیم اور اسپرٹڈ اوے جیسے اینیمے دیکھے ہیں جو مجھے آج تک یاد ہیں، جبکہ کارٹونز بس وقتی ہنسی تک محدود رہتے ہیں۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیں۔ پہلی رائے،
مجھے بچپن ہی سے کارٹونز دیکھنے کا شوق تھا، لیکن جب میں نے پہلی بار اینیمے دیکھا تو مجھے لگا جیسے کسی فلم کی کہانی دیکھ رہا ہوں۔ اینیمے میں جو جذبات، कहानी और किरदारों की गहराई होती है वो आम कार्टून्स में नहीं होती। कार्टून्स ज़्यादातर मिजाहिया होते हैं जबकि एनिमे इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। मेरे लिए एनिमे बेहतर है क्योंकि इसमें संजीदगी भी होती है और तफरी भी।
दूसरी राय।
मेरे नज़दीक दोनों की अपनी जगह है लेकिन अगर मवाजना किया जाए तो एनिमे में तखय्युल और बसरी खूबसूरती कहीं ज़्यादा है। मैंने जब अटैक ऑन टाइटन देखा तो समझ आया कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ रखता है। आम कार्टून्स चंद मिनट की हंसी तक महदूद होते हैं लेकिन एनिमे एक मुकम्मल दुनिया बनाता है, इसी वजह से मुझे एनिमे ज़्यादा पसंद है।
तीसरी राय।
कार्टून्स और एनिमे दोनों का अपना अलग अंदाज होता है लेकिन मेरे ख्याल में एनिमे में जो पेचीदा कहानियाँ और किरदारों की तरक्की बहुत मुतासिर कुन होती है। मैंने नरूटो के ज़रिए दोस्ती, मेहनत और क़ुरबानी के मानी सीखे जो किसी आम कार्टून में मुमकिन नहीं था। कार्टून्स अक्सर सादा और सतही होते हैं जबकि एनिमे इंसान की जज्बाती कैफियतों को भी दिखाता है।
चौथी राय। मेरे लिए एनिमे सिर्फ तफरी नहीं बल्कि एक तरह की जज्बाती वाबस्तगी है। जब मैं कोई एनिमे देखता हूँ तो मैं किरदारों के साथ जुड़ जाता हूँ, उनकी खुशी और गम महसूस करता हूँ। कार्टून्स में ऐसा कम ही होता है क्योंकि वो सिर्फ हंसाने पर जोर देते हैं। एनिमे के मनाजिर, मौसीकी और मुकालमे इतने मुअस्सर होते हैं कि वो दिल में उतर जाते हैं, इसलिए मेरे लिए एनिमे कार्टून से कहीं बेहतर है। पांचवीं राय।
मैं मानता हूँ कि हर एक की पसंद मुख्तलिफ होती है लेकिन एनिमे में जो बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो इसकी सकाफत और गहराई है। जापानी तहजीब, रसूम और रहन सहन का अंदाज एनिमे के ज़रिए सीखने को मिलता है जबकि कार्टून्स में ज़्यादातर ख्याली और मिजाहिया बातें दिखाई जाती हैं। एनिमे में सबक भी होता है और हकीकत का अक्स भी, इसी वजह से मैं एनिमे को ज़्यादा अहमियत देता हूँ।
छठी राय।
अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि एनिमे और कार्टून्स का मवाजना करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि दोनों का मकसद मुख्तलिफ होता है, लेकिन फिर भी एनिमे की कहानियों में जो तसलसल, जज्बात और मकसद होता है वो कार्टून से कहीं ज़्यादा मुतासिर कुन होता है। मैंने योर नेम और स्प्रिटेड अवे जैसे एनिमे देखे हैं जो मुझे आज तक याद हैं जबकि कार्टून्स बस वक्ती हंसी तक महदूद रहते हैं।
मश्क नंबर 3 खत्म हुई। अब आप थोड़ी देर में मश्क नंबर 4 सुनेंगे। पर्चे में दिए गए मश्क नंबर 4 के सवालात पढ़ें। मश्क नंबर 4 सवाल नंबर 11-18। आप एक लाइब्रेरियन मेहर काशिफ की कुतुब से लगन के हवाले से इंटरव्यू सुन रहे हैं। इंटरव्यू सुनकर हर सवाल के लिए ए बी सी में से सही जवाब के सामने दिए गए खाने में टिक का
निशान लगाएं। आप इंटरव्यू दो बार सुनेंगे।
अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ हैं मोहतरमा मेहर काशिफ, जो पिछले 18 सालों से एक शहरी कुतुबखाने की निगरान हैं। लेकिन ये सिर्फ एक लाइब्रेरियन नहीं, बल्कि उनके पास एक राज है कि कौन सी किताब किस कारी की ज़िंदगी में इनकलाब ले आई। आइए इनसे बात करते हैं। मेहर साहिबा, खुश आमदेद।
बहुत शुक्रिया, खुशी हुई कि आज किताबों पर बात हो रही है, वो भी संजीदगी से।
सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको लाइब्रेरी के साथ वाबस्तगी कैसे हुई, क्या ये एक नौकरी थी या कोई ज़ाती लगाव भी था?
सवाल खासा दिलचस्प है। शुरू में तो ये सिर्फ एक मुलाजमत थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मेरा मिशन बन गई। जब मैं पहली बार लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो सिर्फ फाइलों, शेल्फ और खामोशी का सामना था। लेकिन जैसे जैसे कारीन आने लगे, मैंने इनके चेहरों पर बदलते रंग देखे। कोई रोता, कोई मुस्कुराता, कोई सोचों में गुम। तब मुझे लगा कि ये किताबें खामोश नहीं, ये बातें करती हैं दिल से दिल तक।
बहुत खूबसूरत बात कही आपने। तो ये सीक्रेट लिस्ट बनाने का ख्याल कैसे आया?
एक दिन एक नौजवान लड़की आई और बोली, आपने जिस किताब की सिफारिश की थी उसने मुझे खुदकुशी से रोक दिया। वो लम्हा मेरे लिए एक झटका था। मैंने तब से ये रिकॉर्ड रखना शुरू किया कि किसने कौन सी किताब पढ़ी और कुछ दिनों बाद उसका रवैया कैसा था। फिर लोग खुद आने लगे और बताने लगे कि ये किताब मैंने पढ़ी, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने एक खुफिया रजिस्टर बना लिया, उसे मैं फहरिस्त तब्दीली कहती हूँ।
ये वाकई नाकाबिले यकीन लगता है। क्या आप हमें ऐसी कुछ किताबों के नाम बता सकती हैं जिन्होंने कारीन की जिंदगी पर असर डाला?
यकीन करें, कुछ बहुत आम सी किताबें थीं, मगर उनका वक्त और कारी का जहनी हाल ऐसा था कि वो जादू कर गई। मसलन एक नौजवान ने मन चले का सौदा पढ़ा और लोगों की खिदमत में सुकून तलाश करने लगा। एक तालिबा ने जाविया किताब पढ़ी और उसका रवैया बदल गया। कीमियागर अल्केमिस्ट पढ़ने वाले नौजवान ने जिंदगी में कोशिश और जस्तजू को अपना लिया। एक फर्द ने मुझे बताया कि नईम सिद्दीकी की किताब मोहसिन इंसानियत पढ़ी तो सीरतुन नबी का असल पैगाम समझ में आ गया।
कितना हैरत अंगेज तजर्बा है आपका। क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी कारी ने आपको तफसील से बताया हो कि किस किताब ने क्या बदला?
हाँ, एक खत मुझे आज भी याद है। एक नौजवान कारी ने जिंदगी से मोहब्बत पढ़ने के बाद लिखा कि मैंने पहली बार अपनी माँ को जाकर गले लगाया, सिर्फ इसलिए कि इस किताब में मैंने एक बेटे की पशेमानी के बारे में पढ़ा और उसने मुझे हिला कर रख दिया।
आपको ये सब रिकॉर्ड रखने का शौक तो था ही, लेकिन क्या किसी ने कभी आपके इस काम को सराहा भी?
वैसे तो ऐसे कामों की तारीफ कम ही होती है। पिछले साल जब एक तालिब इल्म ने एमफिल का तहकीकी मकाला मेरी इस सीक्रेट लिस्ट पर लिखा, तब जाकर मुझे लगा शायद मेरी खामोश नोटबुक अब आवाज बनेगी।
वाकई आपका काम तो काबिल-ए-सताइश है। नौजवान कारीन کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟
بس یہی کہ کتاب سے دوستی کریں، آپ بس پڑھتے رہیے، کبھی نہ کبھی وہ صفحہ آ جائے گا جو سب بدل دے گا۔
مہر کاشف صاحبہ، آپ کی باتوں نے آج واقعی دل پر دستک دی ہے۔ پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔
مجھے بھی آپ کے پروگرام میں شرکت کر کے بہت خوشی ہوئی۔
اب آپ یہ انٹرویو دوبارہ سنیں۔
السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہیں محترمہ مہر کاشف، جو پچھلے 18 سالوں سے ایک شہری کتب خانے کی نگران ہے۔ لیکن یہ صرف ایک لائبریرین نہیں، بلکہ ان کے پاس ایک راز ہے کہ کون سی کتاب کس قاری کی زندگی میں انقلاب لے آئی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مہر صاحبہ، خوش آمدید۔
بہت شکریہ، خوشی ہوئی کہ آج کتابوں پر بات ہو رہی ہے، وہ بھی سنجیدگی سے۔
سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو لائبریری کے ساتھ وابستگی کیسے ہوئی؟ کیا یہ ایک نوکری تھی یا کوئی ذاتی لگاؤ بھی تھا؟
سوال خاصا دلچسپ ہے۔ شروع میں تو یہ صرف ایک ملازمت تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ میرا مشن بن گئی۔ جب میں پہلی بار لائبریری میں داخل ہوئی تو صرف فائلوں، شیلف اور خاموشی کا سامنا تھا، لیکن جیسے جیسے قارئین آنے لگے، میں نے ان کے چہروں پر بدلتے رنگ دیکھے۔ کوئی روتا، کوئی مسکراتا، کوئی سوچوں میں گم۔ تب مجھے لگا کہ یہ کتابیں خاموش نہیں، یہ باتیں کرتی ہیں دل سے دل تک۔
بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو یہ سیکرٹ لسٹ بنانے کا خیال کیسے آیا؟
ایک دن ایک نوجوان لڑکی آئی اور بولی، آپ نے جس کتاب کی سفارش کی تھی اس نے مجھے خودکشی سے روک دیا۔ وہ لمحہ میرے لیے ایک جھٹکا تھا۔ میں نے تب سے یہ ریکارڈ رکھنا شروع کیا کہ کس نے کون سی کتاب پڑھی اور کچھ دنوں بعد اس کا رویہ کیسا تھا۔ پھر لوگ خود آنے لگے اور بتانے لگے کہ یہ کتاب میں نے پڑھی، اس نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے ایک خفیہ رجسٹر بنا لیا، اسے میں فہرست تبدیلی کہتی ہوں۔
یہ واقعی ناقابل یقین لگتا ہے۔ کیا آپ ہمیں ایسی کچھ کتابوں کے نام بتا سکتی ہیں جنہوں نے قارئین کی زندگی پر اثر ڈالا؟
یقین کریں، کچھ بہت عام سی کتابیں تھیں، مگر ان کا وقت اور قاری کا ذہنی حال ایسا تھا کہ وہ جادو کر گئیں۔ مثلا ایک نوجوان نے من چلے کا سودا پڑھا اور لوگوں کی خدمت میں سکون تلاش کرنے لگا۔ ایک طالبہ نے زاویہ کتاب پڑھی اور اس کا رویہ بدل گیا۔ کیمیا گر الکیمسٹ پڑھنے والے نوجوان نے زندگی میں کوشش اور جستجو کو اپنا لیا۔ ایک فرد نے مجھے بتایا کہ نعیم صدیقی کی کتاب محسن انسانیت پڑھی تو سیرت النبی کا اصل پیغام سمجھ میں آ گیا۔
کتنا حیرت انگیز تجربہ ہے آپ کا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی قاری نے آپ کو تفصیل سے بتایا ہو کہ کس کتاب نے کیا بدلا؟
ہاں، ایک خط مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایک نوجوان قاری نے زندگی سے محبت پڑھنے کے بعد لکھا کہ میں نے پہلی بار اپنی ماں کو جا کر گلے لگایا، صرف اس لیے कि इस किताब में मैंने एक बेटे की पशेमानी के बारे में पढ़ा और उसने मुझे हिला कर रख दिया।
आपको ये सब रिकॉर्ड रखने का शौक तो था ही, लेकिन क्या किसी ने कभी आपके इस काम को सराहा भी?
वैसे तो ऐसे कामों की तारीफ कम ही होती है। पिछले साल जब एक तालिबिल्म ने एमफिल का तहकीकी मकाला मेरी इस सीक्रेट लिस्ट पर लिखा, तब जाकर मुझे लगा शायद मेरी खामोश नोटबुक अब आवाज बनेगी।
वाकई आपका काम तो काबिले सताइश है। नौजवान कारीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी?
बस यही कि किताब से दोस्ती करें। आप बस पढ़ते रहिए, कभी ना कभी वो सफा आ जाएगा जो सब बदल देगा।
मेहर काशिफ साहिबा, आपकी बातों ने आज वाकई दिल पर दस्तक दी है। प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
मुझे भी आपके प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी हुई।
रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई और इसके साथ ये इम्तहान भी ख़त्म हुआ।